पृष्ठ संख्या 206, 19, राजस्थान की वैष्णव परंपरा। राजस्थान के वैष्णव मंदिरों के गोस्वामियों की वंश परंपरा में संगीत कला के संस्कार एवं उसकी विविध शिक्षा हमेशा देखी गई है। बीकानेर की वैष्णव परंपरा के गोस्वामी गोविंद लाल जी ने मृदंग वादन की शिक्षा जामनगर के बलदेव शाह घराने के दरबारी कलाकार पंडित आदित्य राम जी से एवं उनके शिष्य लाल जी से प्राप्त की थी। कहते हैं कि गोस्वामी विट्ठल गोविंद लाल ने कुदऊ सिंह घराने के पंडित भोलानाथ पाठक से भी सीखा था। वे उच्च कोटि के मृदंग वादक थे। गोस्वामी गोविंद लाल जी के शिष्यों में श्री जसकरण का नाम उल्लेखनीय है। तदुपरांत बीकानेर के वैष्णव संप्रदाय के गोस्वामी वल्लभ जी ने भी कुदऊ सिंह घराने के पंडित मदन मोहन उपाध्याय और उनके शिष्य पंडित रामदेव पाठक से मृदंग वादन की विधिवत शिक्षा ली थी। पखावज वादन में गोस्वामी वल्लभ दास जी का हाथ बहुत सुरीला था और वे अत्यंत मधुर पखावज वादन करते थे। उनके शिष्यों में शिवजी श्रीमाली का नाम प्रमुख है। बीकानेर के रतन बिहारी मंदिर में पंडित अन्नू जी नाम के एक अच्छे मृदंगाचार्य वर्षों तक सेवारत रहे। उनका देहांत करीब सन 1920 के आसपास हुआ। बंगाल के राज परिवारों की संगीत साधना। भारत के दूसरे देशी राज्यों की भांति ही बंगाल के विविध राजघराने भी संगीत साहित्य एवं विविध कलाओं के आश्रय धाम बने रहे थे। बंगाल के राज परिवारों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे मात्र संगीत प्रेमी या कलाकारों के आश्रयदाता ही नहीं थे, वरन उनमें से बहुतेरे स्वयं उच्च कोटि के कलाकार होते थे। पृष्ठ संख्या 207 तथा उत्कृष्ट गुरुओं को अपने यहाँ रखकर वर्षों पर्यंत उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। इस क्षेत्र में रामगोपालपुर मैमनसिंह का राजघराना, नाटोर का राजवंश, गौरीपुर असम के राजा नारलोजी के नरेश, 24 परगना के छोटे मोटे जमींदार, ढाका के जमींदार, मुर्शिदाबाद के नवाब, राजग्राम के जमींदार, टैगोर का राजवंश इत्यादि के नाम उल्लेखनीय है। 20, रामगोपालपुर का राजवंश। रामगोपालपुर की रियासत में मैमनसिंह के राजा योगिंद्र किशोर राय चौधरी तथा उनके भाई ब्रजेंद्र किशोर राय चौधरी बड़े संगीत रसिक एवं कला प्रेमी व्यक्ति थे। भारत के उच्च कोटि के संगीतकार उनके समक्ष अपनी कला प्रस्तुत करने को ललायित रहते थे तथा ऐसे गुणी अन्नदाता की प्रशंसा प्राप्त करना अपना सौभाग्य समझते थे। इसीलिए रामगोपालपुर में कलाकारों का सदैव मेला लगा रहता था। कोई कलाकार महीने भर, कोई साल भर, तो कोई वर्षों पर्यंत वहाँ का आश्रय ग्रहण करके अपनी कला साधना तथा संगीत शिक्षा में निमग्न रहता था। राजा योगिंद्र किशोर राय चौधरी के भ्राता राय ब्रजेंद्र किशोर राय चौधरी सुप्रसिद्ध मृदंग वादक मुरारी मोहन गुप्त के शिष्य थे, जिन्हें बंगाल का मृदंग केसरी कहा जाता था। राजा योगिंद्र किशोर जी के चारों पुत्र उत्तम कलाकार थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र नगेंद्र किशोर राय चौधरी गायक पंडित शिव सेवक जी के शिष्य थे। द्वितीय पुत्र यतीन्द्र किशोर राय चौधरी पंडित दक्षिणा शंकर सेन के शिष्य थे। तृतीय सौरेंद्र किशोर राय चौधरी पंडित दीनबंधु गोप उस्ताद गुलाम कादर तथा उस्ताद मोहम्मद खां के शिष्य थे तथा चौथे पुत्र हीरेंद्र किशोर राय चौधरी हिंदुस्तान में तबला क्षेत्र के अनन्य कलाकार माने जाते थे। उन्होंने लखनऊ घराने के उस्ताद आबिद हुसैन खां से, दिल्ली घराने के उस्ताद नथू खां से, ढाका के प्रसन्न कुमार साहा वाणिक से, फरुखाबाद घराने के मसीदुल्लाह से तथा बनारस घराने के पंडित मौलवी राम मिश्र से तबले की दीर्घ शिक्षा प्राप्त की थी। तबले के प्रकांड पंडित के रूप में बड़े बड़े कलाकार उनका लोहा मानते थे। इनके महल में भारत के सर्वश्रेष्ठ तबला वादक आते जाते रहते थे, जिनमें उनके गुरुओं के अतिरिक्त आजीम खां जावरे वाले, मौला बख्श मुरादाबाद वाले, गोपाल तथा महाताब ढाका वाले, करामतुल्ला फरुखाबाद वाले इत्यादि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। राजा योगिंद्र किशोर राय चौधरी के सभी पौत्र भी अच्छे कलाकार एवं संगीत साधक थे, जिनमें वीरेंद्र किशोर, गिरिंद्र किशोर, नृपेंद्र किशोर, रणेंद्र किशोर, अरुणेंद्र किशोर तथा दामाद नागेंद्र चंद्र लाहिड़ी इत्यादि सबके सब संगीतकार थे। इन सब में सितार वादक उस्ताद इनायत खां के शिष्य वीरेंद्र किशोर तथा तबला वादक अरुणेंद्र किशोर के नाम उल्लेखनीय हैं। ऐसे कला प्रेमी, प्रोत्साहक एवं पूरा राजवंश ही कलाकार हो, ऐसा अद्भुत दृष्टांत हिंदुस्तान के इतिहास में दुर्लभ है। पृष्ठ संख्या 208, 21, नाटोर का राजवंश। मैमन सिंह की भांति नाटोर वंश की राज परंपरा भी संगीत प्रेमी और साधक रही है। स्वयं महाराजा गोविंदनाथ राय प्रसिद्ध सितार वादक मोहम्मद खां के शिष्य थे। उनके पुत्र महाराजा जगदिंद्रनाथ राय, पौत्र महाराजा योगिंद्रनाथ राय तथा प्रपौत्र कुमार जयंतनाथ राय एवं कुमार इंद्रजीत राय इत्यादि संगीत के ज्ञाता थे। राजा साहब की पुत्री राजकुमारी शरत सुंदरी देवी चौधरानी, उनके नाती ब्रजेंद्र कांत राय चौधरी तथा प्रनाती विमला कांत राय चौधरी सबके सब संगीत के क्रियात्मक अभ्यासी एवं संगीत शास्त्र के उत्तम ज्ञाता थे। श्री विमला कांत राय चौधरी की बंगला पुस्तक भारतीय संगीत कोश अपने ढंग की अनोखी कृति है, जो इस राजवंश की संगीत सुज्ञता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस कोश का अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है। 22, ढाका के जमींदारों की परंपरा। ढाका के मुसपारा के जमींदार श्री पूरन चंद्र बनर्जी संगीत के परम भक्त थे। वे अच्छे गायक वादकों को अपने घर आमंत्रित किया करते थे। ढाका के सुप्रसिद्ध तबला वादक श्री प्रसन्न कुमार साहा वाणिक्य का उनके परिवार के साथ गहरा संबंध था। अतः जमींदार पूरन चंद्र जी ने अपने पुत्र राय बहादुर केशव चंद्र बनर्जी की तबला शिक्षा का भार श्री प्रसन्न कुमार जी को सौंपा था। तदुपरांत राय बहादुर केशव चंद्र जी ने दिल्ली घराने के तबला नवाज उस्ताद नथू खां को अपने घर में 4 वर्ष रखकर उनसे भी दीर्घ शिक्षा प्राप्त की थी। राय बहादुर पूर्व बंगाल के उत्तम तबला वादक माने जाते थे। भारत के विभाजन के पश्चात वे ढाका छोड़कर कलकत्ता में बस गए। वे इतने विद्या व्यसंगी थे कि 81 वर्ष की वयोवृद्ध अवस्था पर्यंत प्रतिदिन 3 घंटे का नियमित अभ्यास किया करते थे। 23, टैगोर वंश। बंगाल के सुप्रसिद्ध टैगोर वंश के प्रत्येक व्यक्ति कला प्रेमी रहे हैं। संगीत के क्षेत्र में श्री रविंद्रनाथ टैगोर का योगदान महत्वपूर्ण है, जो रविंद्र संगीत के नाम से आज देश विदेश में व्याप्त है। किंतु उनके पूर्वज राजा सर सौरिंद्र मोहन टैगोर तथा राजा जोगिंद्र मोहन टैगोर का उल्लेख यहाँ विशेष आवश्यक है, क्योंकि उन दोनों के महत्वपूर्ण कार्यों ने संगीत के इतिहास को एक उल्लेखनीय एवं सृजनात्मक मोड़ दिया है। पथुरिया घाट के राजा जोगिंद्र मोहन टैगोर संगीत के आश्रयदाता ही नहीं वरन नवीन उदयमान प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने वाले सहृदयी व्यक्ति भी थे। उनके सहयोग से अनेक ज्ञान पिपासु विद्यार्थियों को विद्या अभ्यास करने का सु अवसर प्राप्त हुआ था। 12-13 वर्ष के किशोर विद्याभिलाषी आलम को आलम मैहर के सुप्रसिद्ध सरोद नवाज उस्ताद अलाउद्दीन खां का बचपन का नाम अपने दरबारी गायक पंडित गोपाल चंद्र भट्टाचार्य तथा पखावजी नंदी भट्ट से शिक्षा दिलवाने का प्रबंध उन्हीं के द्वारा हुआ था। बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां की महान संगीत प्रतिभा तथा वाद्य संगीत के क्षेत्र में उनके क्रांतिकारी पदार्पण के पीछे ऐसे अनेक सहृदय व्यक्तियों का योगदान छिपा है। पृष्ठ संख्या 209। राजा जोगिंद्र मोहन टैगोर के अग्रज राजा सौरिंद्र मोहन टैगोर भी कला प्रेमी व्यक्ति थे। वे स्वयं संगीत के प्रखर अभ्यासी तथा शास्त्रज्ञ थे। सन 1875 ईस्वी में उनकी प्रथम पुस्तक हिंदू संगीत अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई थी। तत्पश्चात सन 1896 ईस्वी में उनकी दूसरी पुस्तक कृति यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक प्रकाश में आई। इन दोनों पुस्तकों का महत्व केवल राजा साहब की सांगीतिक विद्वता के प्रदर्शन तक ही सीमित नहीं है, वरन इनसे भारतीय संगीत के सौंदर्य का गुप्त रहस्य जगत के सामने आ सका है। राजा सर सौरिंद्र मोहन टैगोर की इस पुस्तक से भारतीय संगीत के प्रति अंग्रेजों में तथा संगीत को घृणित समझने वाले शिक्षित हिंदी समाज में रुचि उत्पन्न हो सकी, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने भारतीय संगीत को समझने का प्रयास आरंभ किया। उनकी पुस्तकों से प्रभावित होकर श्री एजे हेपकिंस, श्री ब्रूनो नेत, श्री एलन डेनियल, श्री ए एच पोक्ष स्ट्रेगवेज, श्री ई क्लेमेंट्स, श्री हर्बर्ट पोपले, श्री इथल रोसेंटल, श्री जूलिस कोम्बेरियन इत्यादि पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीय संगीत का सूक्ष्म अध्ययन किया एवं इस गहन विषय को यूरोपीय संगीत जगत में स्पष्ट करने के हेतु इन विद्वानों ने भारतीय संगीत के विविध विषयों पर स्वयं अनेक पुस्तकों का निर्माण किया। भारतीय संगीत पर राजा सर सौरिंद्र मोहन टैगोर का यह ऋण अनन्य है। 24. अगरतला का राज दरबार। संभवतः 150 वर्ष पूर्व अगरतला का राज दरबार संगीत का धाम था। श्री राम कन्हाई शील तथा श्री रामधन शील नामक दो प्रसिद्ध संगीतकार भ्राता उन दिनों अगरतला दरबार के राज कलाकार थे। उस्ताद अलाउद्दीन खां के बड़े भाई उस्ताद आफताबुद्दीन खां की संगीत शिक्षा श्री राम कन्हाई शील से हुई थी। उस्ताद अलाउद्दीन खां ने बचपन में तबले की शिक्षा अपने बड़े भाई उस्ताद आफताबुद्दीन से ही पाई थी। उस्ताद आफताबुद्दीन का नाती एवं शिष्य यार रसूल उर्फ फुलझड़ी खां तबले के उत्तम कलाकार थे, जो अगरतला की राज परंपरा से संबंधित थे। तत्पश्चात वे मैहर के राज कलाकार हुए। 25. मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद के संगीत प्रेमी नवाब के पास सुप्रसिद्ध तबला नवाज उस्ताद अता हुसैन खां कुछ वर्ष तक रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस्ताद अता हुसैन खां ने नवाब साहब के साथ इंग्लैंड की यात्रा की थी, अतः लगभग 125 वर्ष पूर्व इंग्लैंड जैसे पाश्चात्य देश में भारतीय ताल एवं तबला वाद्य को सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। इस कार्यक्रम का आयोजन मुर्शिदाबाद के नवाब राजा द्वारा हुआ था। तबले के इतिहास में यह घटना महत्वपूर्ण मानी जाएगी। 26. राजग्राम। बंगाल में विष्णुपुर के पास एक छोटी सी जागीर है जो राजग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। इस राजग्राम के जमींदार बेचाराम पांजा तथा उनके पुत्र षष्ठी राम पांजा संगीत के विशेष तौर पर पखावज तथा खोल के बड़े प्रेमी थे। षष्ठी राम पांजा ने स्वयं पखावज की तालीम पंडित भैरव चक्रवर्ती से प्राप्त की थी। उन्हें अपने आश्रय में रखकर उन्होंने उनसे शिक्षा प्राप्त की। पृष्ठ संख्या 210, 27, 24 परगना। त्रिपुरा तथा 24 परगना के अनेक जमींदार संगीत के रसिक थे तथा अपने यहाँ कलाकारों को बुलाकर संगीत का रसास्वादन करते थे। इनमें जयनगर मंजिलपुर के जमींदार राय बहादुर खगेंद्रनाथ मित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। वे खोल तथा पखावज के बड़े चाहक थे। सुप्रसिद्ध बंगाली खोल वादक पंडित नवदीप चंद्र बनर ब्रिजवासी के वे शिष्य थे। उनके वंशज प्रताप चंद्र मित्र ने पखावज के क्षेत्र में अंतर्देशीय ख्याति प्राप्त की थी। आकाशवाणी के प्राथमिक दिनों में वयोवृद्ध प्रताप चंद्र मित्र का पखावज वादन रेडियो से प्रसारित हुआ करता था। 28, गौरीपुर तथा नरलोजी। गौरीपुर असम के राजा प्रतापनाथ बडुआ तबले के अनन्य भक्त थे। उन्होंने तबले की तालीम ढाका के सुप्रसिद्ध उस्ताद अता हुसैन से प्राप्त की थी। राजा बडुआ से अता हुसैन को बड़ा स्नेह था, अतः खां साहब गौरीपुर में भी काफी रहा करते थे। नरलोजी दरबार के जमींदार भी तबला तथा पखावज के शौकीन थे। सुप्रसिद्ध मृदंगाचार्य पंडित बिजन चंद्र हजारे उनके दरबारी कलाकार थे। बिहार के राजाओं एवं जमींदारों का संगीत प्रेम। देश के अन्य भागों की भांति बिहार के दरभंगा, अमता, गया, आरा, पचगछिया, मुजफ्फरपुर आदि जगहों के राजा एवं जमींदार भी संगीत के बड़े प्रेमी, प्रोत्साहक एवं अभ्यासी रहे हैं। 29, दरभंगा। दरभंगा नरेश महाराजा माधव सिंह ध्रुपद गायकी एवं पखावज वादन के रसिक थे। उन दिनों नवाब शुजाउद्दौला के अवध दरबार में पंडित राधा कृष्ण एवं पंडित करताराम नाम के दो ध्रुपद गायक थे। दरभंगा के महाराजा माधव सिंह उनकी कला से प्रभावित थे, अतः सन 1885 ईस्वी में वे इन दोनों भाइयों को नवाब शुजाउद्दौला से आग्रह पूर्वक मांग कर अपने राज्य में ले आए तथा राज गायक का स्थान देकर उन्हें अमता में बसाया। उनकी साथ संगत के लिए प्रसिद्ध पखावज वादक को भी नियुक्त किया गया। इन्हीं की परंपरा में आज के प्रसिद्ध ध्रुपदीय पंडित रामचतुर मल्लिक आते हैं। पृष्ठ संख्या 211। बलिया के निवासी पंडित देवकी नंदन पाठक कुदव सिंह परंपरा के पंडित मदन मोहन उपाध्याय तथा बाबा ठाकुर दास के शिष्य थे। दरभंगा दरबार में उनका पखावज वादन अनेक बार हुआ है। उनके शिष्य पंडित विष्णुदेव पाठक भी अच्छे पखावजी थे तथा दरभंगा दरबार के कलाकार थे। उनके दोहित्र पुत्र रामाशीष पाठक इस परंपरा के सफल उत्तराधिकारी हैं तथा आकाशवाणी दरभंगा के कलाकार हैं। पंडित मदन मोहन के एक दूसरे शिष्य पंडित केशव महाराज तबले के सिद्धहस्त कलाकार थे। बिहार के तबला वादकों में उनका स्थान महत्वपूर्ण था। वे गया तथा दरभंगा स्टेट में लंबे काल तक रहे। 30, आरा। आरा के जमींदार श्री शत्रुंजय प्रसाद सिंह उर्फ लल्लन बाबू संगीत के अनन्य प्रेमी, आश्रयदाता तथा अभिजात संगीत के प्रचारक थे। वे तबला तथा पखावज के अनन्य प्रेमी थे। उन्होंने प्रसिद्ध पखावजी पंडित देवकी नंदन पाठक से नियमबद्ध शिक्षा पाई थी। उनकी विद्वता का लोहा बड़े बड़े गुणीजन माना करते थे। 31, पचगछिया तथा मुजफ्फरपुर। पचगछिया के विद्वान संगीत प्रेमी जमींदार राय बहादुर लक्ष्मी नारायण सिंह स्वयं अच्छे पखावजी थे। महाराज कुदव सिंह घराने के पंडित मदन मोहन उपाध्याय के शिष्य श्री बाबूदेव उपाध्याय की प्राथमिक शिक्षा जमींदार राय बहादुर लक्ष्मी नारायण सिंह के द्वारा ही पचगछिया में हुई थी। पंडित वासुदेव उपाध्याय बिहार के उत्तम पखावजी माने जाते थे। अपने जीवन की उत्तरावस्था में वे मुजफ्फरपुर के संगीत प्रेमी जमींदार श्री उमाशंकर बाबू के आश्रित रहे। उपाध्यक्ष जी के पुत्रों में श्री बलदेव तथा श्री रामजी उपाध्याय के नाम उल्लेखनीय हैं। श्री बलदेव के पुत्र श्री पन्नालाल उपाध्याय ने पखावज के क्षेत्र तथा द्वितीय पुत्र श्री मदन मोहन ने तबला के क्षेत्र में अच्छा स्थान प्राप्त किया है। दोनों आकाशवाणी के कलाकार हैं। बिहार के इन पखावजियों की वादन विशेषता में गंभीरता और अलंकारिकता का मेल है। वे विलंबित लय में वादन की खूबियों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसी वादन क्षमता कम पाई जाती है। महाराष्ट्र की संगीत परंपरा। शिवाजी महाराज, उनके पुत्र पौत्र तथा पेशवाई राज परंपरा से लेकर के गत सदी में कुछ महाराष्ट्र के छोटे मोटे सभी राज परिवारों में संगीत एवं साहित्य का महत्व तथा उसके प्रति आदर एवं कला भक्ति की भावना देखने को मिलती है। महाराष्ट्र की जनता सदियों से कला प्रेमी रही है। इस भूमि ने कलाकारों को तथा शास्त्रज्ञों को आश्रय दिया है। पृष्ठ संख्या 212। देश के इस हिस्से को महाराष्ट्र का गौरवशाली नाम प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र में बहुत पहले अर्थात 13वीं शती में यादव वंश के राजाओं के प्रोत्साहन से काश्मीरी ब्राह्मण सारंगदेव ने देवगिरी में अस्थाई होकर संगीत रत्नाकर जैसे अमूल्य ग्रंथ की रचना की थी। 14वीं शताब्दी के पश्चात महाराष्ट्र के संगीत पर बीजापुर की आदिलशाही का प्रभाव रहा, जिसके फलस्वरूप महाराष्ट्रीय राजाओं के दरबार में शास्त्रीय गायक वादन की प्रधानता रही। मुगल युग के उत्तर काल में जहां उत्तर भारत की राजकीय एवं सांस्कृतिक परिस्थिति अस्थिर हो गई थी तथा संगीत का स्रोत जहां अयाशी में डूबा कर मलिन हो गया था, वहां महाराष्ट्र में संगीत का शुद्ध एवं भक्तिमय स्वरूप देखने को मिलता था। वहां के कलाकार संगीत को व्यवसाय नहीं वरन विद्या और संस्कृति का माध्यम समझते थे। तदुपरांत भक्ति संप्रदाय के महाराष्ट्रीय संतों ने अपने भजन कीर्तन अभंग की धुन से इस भूमि को भक्तिमय बना दिया था। महाराष्ट्र का भक्ति संगीत शास्त्रीय संगीत पर आधारित है, अतः भजन कीर्तन अभंग के साथ भारतीय संगीत का अभिजात स्वरूप महाराष्ट्र के घर घर में फैल करके जनजीवन को आवश्यक अंग बना गया। 32 शिवाजी तथा पेशवाई दरबारों में संगीत। 16वीं शती के पश्चात महाराष्ट्र के इतिहास में शिवाजी महाराज के आविर्भाव के साथ स्वतंत्र एवं देश की एक नई लहर फैल गई। आज तक महाराष्ट्रीय जनता में जो संगीत भक्ति स्वरूप से घुल मिल गया था, वह अब राज दरबारों में भी सम्मानित स्थान प्राप्त करने लगा। अभिजात संगीत के कलाकारों को राजाश्रय प्राप्त होने लगे। शिवाजी के राज्याभिषेक के उत्सव में एक सप्ताह तक गायन वादन नृत्य का महोत्सव हुआ था, जिसमें देश के नामांकित कलाकार आमंत्रित किए गए थे, ऐसा उल्लेख इतिहास में उपलब्ध है। शिवाजी के पश्चात पेशवाओं के दरबार में भी संगीत तथा संगीतकारों को आदरणीय स्थान मिला। पेशवाई दफ्तर से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीजा राव पेशवा द्वितीय संगीत के अनन्य प्रेमी एवं साधक थे। बीजा राव बाजीराव मस्तानी की प्रेम गाथा एवं संगीत साधना आज भी इतिहास में आकर्षण का केंद्र है। बाजीराव के राज दरबार को देश के उत्कृष्ट कलाकार सुशोभित करते थे। श्रीमंत पेशवा स्वयं उन कलाकारों के साथ बैठकर संगीत के क्रियात्मक एवं शास्त्रीय पहलुओं पर चर्चा किया करते थे। गायकों एवं तंतुवादकों के उपरांत अनेक पखावजी भी उनमें शामिल होते थे, जिनमें पखावजी नागू गुरव तथा पखावजी देवदास बहिरजी के नाम उल्लेखनीय है। नाना साहब श्रीमंत के पेशवाई दरबार में मृदंगवादक धर्मा गुरव राज कलाकार थे। पेशवाई के समय में अनेक छोटे मोटे राज्यों का महाराष्ट्र में उदय हुआ, जिनमें कोल्हापुर, सांगली, इचलकरंजी, सतारा, औंध इत्यादि प्रमुख हैं। पृष्ठ संख्या 213, 33, सतारा। महाराष्ट्र के राज परिवारों में सतारा के महाराज श्रीमंत भाऊ साहेब का उल्लेख विशेष महत्वपूर्ण है। संगीत के चाहक एवं कलाकारों के आश्रयदाता के साथ वे स्वयं उच्च कोटि के मृदंगाचार्य थे। उन्होंने सुप्रसिद्ध मृदंग केसरी नाना पानसे से शिक्षा पाई थी। अपने गुरु पानसे जी को साल में कई महीने वे अपने वहाँ बुला लेते थे और उनसे गंभीरतापूर्वक नियमबद्ध शिक्षा ग्रहण करते थे। उस अवधि में आसपास के दूसरे कलाकार भी पानसे जी से सीखने के हेतु सतारा चले आते थे। श्रीमंत भाऊ साहब को पखावज के प्रति इतनी भक्ति थी कि देश के उत्कृष्ट कलाकारों को तो वे अपने यहाँ आमंत्रित करते ही थे। जहाँ कोई अच्छा कलाकार को सुनने का मौका मिले वहाँ स्वयं बिना संकोच चले जाते थे। कुदौ सिंह परंपरा के वयोवृद्ध साधक पंडित अतन बुआ साधले का पखावज सुनने हेतु भाऊ साहेब की कोल्हापुर यात्रा का उल्लेख कई जगह प्राप्त होता है, जो उनकी अनन्य संगीत भक्ति का उदाहरण है। श्रीमंत भाऊ साहब ने तास गांव के श्री धर्माजी गुरव को तथा सतारा के श्री गोविंद सिंह चौहान को मृदंग की शिक्षा दी थी। इन दोनों कलाकारों ने अपने अपने क्षेत्र में काफी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। 34, कोल्हापुर। कोल्हापुर के श्रीमंत छत्रपति शाहू महाराज संगीत के बड़े रसिक थे। उस्ताद अल्लादिया खां को वे अपने राज दरबार में बड़े आदर के साथ ले आए। तब से मरण पर्यंत खां साहब कोल्हापुर में ही रहे। उस्ताद के अतिरिक्त अनेक उत्कृष्ट कलाकार उनके राज दरबार को सुशोभित करते थे, जिनमें उस्ताद अल्लादिया खां के पुत्र उस्ताद मंजी खां, विश्वनाथ बुआ जाधव, उस्ताद भूरजी खां, पंडित बापू राव शिंदे इत्यादि प्रमुख हैं। श्री बापू राव डिंडे तबला तथा पखावज दोनों के कुशल कलाकार थे तथा नगाड़ा वादन में भी पटु थे। 35, इचलकरंजी। दूसरी रियासतों की तरह इचलकरंजी भी संगीत रसिकों का धाम रहा। यहाँ के नरेश बड़े संगीत प्रेमी थे। युग संगीतकार पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के गुरु पंडित बालकृष्ण इचलकरंजी कर वहीं के निवासी थे। कलाकारों को आश्रय देने के साथ साथ इचलकरंजी नरेश ने अनेक उदयमान विद्यापिपासु विद्यार्थियों को संगीत शिक्षण के लिए व्यवस्था कर दी थी, जिनमें से कुछ नामी कलाकार बन सके। मराठी राजदरबारों के उपरांत देश के दूसरे राज्यों में भी अनेक महाराष्ट्रीय कलाकारों को सम्माननीय स्थान प्राप्त हो सका था, जिनमें मैसूर, बड़ोदरा, इंदौर, ग्वालियर, हैदराबाद इत्यादि प्रमुख हैं। पृष्ठ संख्या 214, महाराष्ट्र की नाट्य संस्थाओं में संगीत का विकास। महाराष्ट्र के संगीत एवं संगीतकारों के इतिहास का अवलोकन करते समय यदि हम महाराष्ट्रीय नाट्य संस्थाओं का उल्लेख करना भूल जाएं, तो संगीत का यह इतिहास अधूरा ही रह जाएगा। महाराष्ट्र में नाट्य कला, अभिनय तथा नाट्य संगीत का जो बहुमुखी विकास हुआ है, वह बंगाल को छोड़कर देश के किसी भी हिस्से में नहीं देखने को मिलता। नाटक मराठी जनता के दैनिक जीवन का मात्र मनोरंजन ही नहीं, आवश्यक अंग भी है, जिसका श्रेय उन नाटक कंपनियों को जाता है जिन्होंने महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांवों तथा शहरों में घूम घूम कर उच्च कोटि के कलाकारों को सामान्य जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इन नाटक कंपनियों की सफलता मुख्यतः उनके नाट्य संगीत पर आधारित थी, जो पूर्णतः शास्त्रीय संगीत पर अवलंबित थी। गत सदी की ऐसी अनेक सुप्रसिद्ध नाटक कंपनियों में गायक एवं नाट्यकार बाल गंधर्व की बाल गंधर्व नाटक कंपनी, केशव राव भोसले की ललित कला दर्शक मंडली, किर्लोस्कर की किर्लोस्कर नाटक कंपनी तथा विश्वनाथ बुआ की नाट्यकला प्रवर्तक मंडली इत्यादि प्रमुख हैं। इन नाटक कंपनियों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इनमें देश के महान गायक वादक काम करते थे, जिनमें पंडित भास्कर बुआ बखले, मीराशी बुआ, सवाई गंधर्व, पंडित गणपति बुआ, नट सम्राट बाल गंधर्व, श्रीमती ज्योत्सना भोले, उस्ताद अहमद जानथी रकवा, उस्ताद बलवंत राय रुकडीकर, पंडित भास्कर बुआ चौधुले इत्यादि कलावंतों के नाम अग्रण्य हैं। इन कलाकारों को सुनने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती थी। नाटक कंपनी के मालिकों द्वारा कलाकारों को बेहद सम्मान दिया जाता था। उदाहरणार्थ, जिस नाटक में उस्ताद अहमद जान थिरकवा तबला बजाने वाले होते थे, उसके पोस्टर पर बड़े अक्षरों में उनका नाम अंकित किया जाता था। अतः लोग उनको सुनने के लिए बेचैन हो जाते थे। यही कारण है कि नाट्य संगीत के बहुमुखी प्रचार ने उनमें प्रयुक्त राग रागनियों एवं तालों के शुद्ध रूपों को महाराष्ट्र के घर घर तक पहुंचा दिया। मराठी राजा रजवाड़ों ने यद्यपि अभिजात संगीत एवं उसके कलाकारों को सदैव आश्रय दिया, तथापि इसके विपुल प्रचार एवं प्रसार का श्रेय इन नाटक कंपनियों द्वारा तथा उनके कलाकारों को जाता है। महाराष्ट्र की रसिक जनता अपनी सांस्कृतिक, कलात्मक एवं आध्यात्मिक जागृति के लिए भक्ति संप्रदाय के उन संतों की तथा नाटक कंपनियों के मालिकों एवं कलाकारों की सदैव ऋणी रहेगी।